अक्षय की यूं अचानक गले से लगाने से आहाना पहले तो चौंक गई, फिर उसका ध्यान अक्षय की बेचैनी से जोरों से धड़कती धड़कनों और बिखरती सांसों पर गया। उसकी खुद पर कसती पकड़ कुछ न कहकर भी बहुत कुछ कह गई थी। आहाना ने भी बिना कुछ कहे उसे अपनी बाहों में भर लिया और प्यार से उसकी पीठ को सहलाने लगी। अक्षय जी, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? अक्षय के कुछ शांत होने पर आहाना ने चिंतित स्वर में सवाल किया। अक्षय, जो अब काफी हद तक शांत हो चुका था, आहाना का स्पर्श पाकर उसका बेचैन दिल भी संभल गया था। उसने यूं ही उसे अपने सीने से लगाए हुए ही जवाब दिया, अब ठीक हूं।
मतलब?
आहाना उसके सीने से सर बाहर निकालकर अक्षय को उलझन भरी नजरों से देखने लगी। अक्षय खुद कुछ उलझन में था, पर आहाना को परेशान होते देख उसने सर झटकते हुए बात टाल दी। कुछ नहीं, अक्षय ने बात यहीं खत्म कर दी, पर आहाना अब भी परेशान से उसे ही देख रही थी। कोई बुरा सपना देखा क्या आपने? सपने का जिक्र सुनते ही अक्षय के दिमाग में एक बार फिर वो सभी दृश्य घूमने लगे। शायद सपना ही था, एक ऐसा सपना जिसे अच्छा भी नहीं कह सकता और बुरा भी नहीं कह सकता, जिसमें दर्द भी था और सुकून भी, जो ख्वाब था पर पल भर को ऐसा लगा जैसे अपने आने वाले कल को देख रहा हूं, सब कुछ हकीकत सा लग रहा था। अक्षय ने खोई स्वर में जवाब दिया। आहाना को ज्यादा कुछ समझ तो नहीं आया, पर उसने और कोई सवाल भी नहीं किया। अच्छा, जो भी था तो ख्वाब ही तो, उसे भूल जाइए और जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाइए। बच्चे कब से तैयार बैठे हैं और आपका ही इंतजार कर रहे हैं। आहाना की बात सुनकर एकाएक अक्षय को याद आया कि आज तो वो सब घूमने जाने वाले हैं। उसने झट से सर हिलाते हुए हामी भरी और आहाना के चेहरे को चूमते हुए तेज कदमों से बाथरूम की ओर बढ़ गया। गुड मॉर्निंग, बस 5 मिनट में आया मैं। इतनी हड़बड़ी में भी वो आहाना की सुबह में अपनी प्यार की मिठास खोलना नहीं भूला था। अक्षय तो चला गया, पर आहाना के लबों पर मीठी मुस्कान छोड़ गया। दूसरी तरफ अंतरा अपने रूम में ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी खुद को ऊपर से नीचे तक देख रही थी। तभी अन्वय ने कमरे में कदम रखते हुए सवाल किया, अंतरा रेडी हो गई तुम? आवाज सुनकर अंतरा मुंह बनाते हुए उसकी ओर पलट गई। क्या लगता है तुम्हें? सवाल के बदले सवाल आया था। अंतरा का सवाल सुनकर अन्वय ने उसे सर से लेकर पैर तक देखा और सौम्य सी मुस्कान उसके लबों पर आ ठहरी। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम, शादी को सालों बीत गए पर आज भी तुम में वो आकर्षण है जो मुझे तुम्हारी ओर खींचता है। जब जब नजर तुम पर पड़ती है, निगाहें तुम्हारे चेहरे पर ठहर जाती हैं और दिल चाहता है कि तुम्हें अपनी बाहों में छुपाकर खूब प्यार करूं। यहां अन्वय पर युमानियत छा गई थी, अल्फाजों में मोहब्बत भरे जज्बात खुलने लगे थे, आंखों में प्यार की कशिश लिए वो अंतरा की ओर बढ़ने लगा था। वहीं उसकी मोहब्बत भरी मीठी मीठी बातों को सुनकर अंतरा ने ऐसा मुंह बनाया जैसे उल्टी करने वाली हो। जैसे ही अन्वय चुप हुआ, अंतरा ने नाक मुंह सिकोड़ते हुए बुरा सा मुंह बनाकर उसे घूरा और झुंझलाते हुए बोली, ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी इन मीठी मीठी बातों को सुनकर तुम्हारी सुबह की हरकत माफ नहीं करने वाली। अंतरा ने बिखरे तेवर और तल्ख लहजा अन्वय को एहसास करवा दिया था कि उसका ये पैंतरा यहाँ काम नहीं आने वाला। अंतरा इतनी जल्दी नहीं मानने वाली, उसने अनजाने में जो गड़बड़ की है उसकी सजा तो उसे भुगतनी ही होगी। फिर भी उसने उसे मनाने की एक आखिरी कोशिश की, अंतरा यार, वो गलती से हो गया था और मैंने उसकी माफी भी तो मांग ली थी, अब मेरी जरा सी भूल के लिए कब तक मुझसे नाराज रहोगी? अन्वय की बात सुनकर अंतरा तीखी निगाहों से उसे घूरने लगी। अन्वय ने तुरंत ही अपने शब्दों को बदला और बेचारगी से बोला, अच्छा बाबा, छोटी सी भूल नहीं थी, मेरी लापरवाही के कारण तुम्हारा कुर्ता खराब हो गया जो तुम्हें बहुत पसंद था। तुम्हारा गुस्सा होना लाजमी है, पर मैं माफी मांग रहा हूं ना, मैं उसे क्लीन करवा दूंगा यार, अब गुस्सा छोड़ भी दो और माफ कर दो मुझे प्लीज। अगर तुमने मेरे कुर्ते को साफ नहीं करवाया तो माफ करने के जगह मैं तुम्हें इस दुनिया से ही साफ कर दूंगी। अंतरा ने चेतावनी भरी नजरों से उसे घूरा और मुंह ऐंठते कमरे से बाहर जाने लगी। बेचारा अन्वय इतना सा मुंह लेकर रह गया, फिर उसके पीछे पीछे जाते हुए उसे मस्का लगाने लगा। अक्षय जब तक रेडी होकर नीचे पहुंचा, बाकी सब तैयार खड़े उसी का इंतजार करते नजर आए। आधी और अद्दू समेत अयान जाकर उसके पैरों से लिपट गया और उसे खींचते हुए बाकी सबके पास ले आए। पिकनिक पर जाने के लिए सब सामान और खाने पीने की चीजें पैक की जा चुकी थी। अन्वय और अंतरा की तकरार भी खत्म हो चुकी थी और अब सभी लोग पिकनिक पर जाने के लिए उत्सुक थे। मिनी बस खड़ी थी जिसमें अन्वय, अंतरा, आहाना, अक्षय, फलक, सुमित, राशि चारों बच्चों के साथ घूमने जाने वाले थे। साथ ही अभिजीत जी और रूपाली जी भी जा रहे थे। मतलब पूरा सहगल परिवार आज घूमने जा रहा था। बीते सालों में रिश्ते कुछ सुधर जरूर गए थे। रूपाली जी के प्रति सबका व्यवहार कुछ बदला जरूर था। आहना ने भी उन्हें माफी देकर उनके मन के बोझ को हल्का कर दिया था, पर उन्होंने खुद को एक दायरे में बांध लिया था। रिश्ते जुड़ तो गए थे, पर उनमें पड़ी गांठ और दिल पर लगे जख्म उन्हें पहले जैसे होने नहीं दे रहे थे। आहना भी कुछ भूली नहीं थी, पर जो बातें उसे और औरों को तकलीफ देती थी अब उन्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ गई थी। अपनी सास नहीं सही, पर अक्षय की माँ होने की इज्जत आहना उन्हें देती थी। उसने अपने बच्चों के मन में उनकी दादी के लिए जो नाराजगी थी वो भी दूर कर दी थी। खुद भले उनके साथ सहज नहीं रहती थी, पर अक्षय और बच्चों पर उसने शुरू से कोई पाबंदी नहीं लगाई थी और खुद भी बहू होने के फर्ज निभाने से पीछे नहीं रही थी। जैसे अभिजीत जी का ख्याल रखती, उनका भी रखती। पूरा सहगल परिवार एक साथ था और रूपाली जी के लिए यही कम नहीं था कि उनके बेटे, बहू, पोते पोती, बेटी दामाद, नातिन सबके बीच थी वो। उनके बच्चे अपनी नाराजगी छोड़कर उनसे कुछ बातें कर लेते थे, उनके साथ थोड़ा वक्त बिता लेते थे। अभिजीत जी की नाराजगी भी कुछ कम हो गई थी। उनके पोते पोती तो उन्हें बस अपनी शैतानियों से परेशान ही करते थे, फिर भी वो खुश थी कि वो उनके पास तो आते हैं। बहुएं भी घर परिवार संभालने के साथ उनका ख्याल रखती थी, खुश थी वो। अभिजीत जी भी प्रसन्न थे। अक्षय, आहना, अंतरा, हनबाई की जिंदगी की हर कमी पूरी हो गई थी। फलक भी अब खुशी खुशी अपने मायके आया करती थी, जहां उसे अपना पूरा परिवार मिलता था, और सहगल परिवार एक साथ खुशहाली से जीवन बिता रहे थे। सब खुशी खुशी पिकनिक पर निकल चुके थे। खट्टी मीठी तकरार और हंसी मजाक और बच्चों की मौज मस्ती के बीच उनका सफर कटने लगा था, बिल्कुल वैसे जैसे उनकी जिंदगी कट रही थी। लाइक एंड कमेंट करके बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। इस तरह की और स्टोरी पढ़नी हो तो मुझे फॉलो करें और मेरी प्रोफाइल पर जाकर बाकी कहानियों को पढ़कर देखो। पर्सनली मैं रिकमेंड करूंगी ट्विस्टेड टाइज ऑफ लव।